नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है दिव्यांगना द्विवेदी एंड मैं बीकॉम टैक्सेशन परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम बीएसएस कॉलेज भोपाल। दैट्स ऑल अबाउट मी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, जो कि है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, मतलब जो हमारे भारत का गोल्डन एरा था उससे लेकर 1206 ईस्वी तक हम उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। भारत विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया कहलाता था। संपूर्ण विश्व को परिवार के रूप में मानना, वसुधैव कुटुंबकम तथा सभी के कल्याण व व्यवस्था की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्माया करना हमारा आदर्श है। देखिए, हमारा जो भारत है हमेशा से गरीब नहीं रहा है, हमेशा से यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं। हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ हर चीज़ की बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी थी, हर चीज़ यहाँ पर मिलती थी, बहुत धन था यहाँ पर, अपार धन था। बहुत पहले की बात है ये तो। और हमारे जो आदर्श थे, हमारे जो मॉरल्स थे, वो किस चीज़ पर थे कि हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानकर चलते थे और हमेशा हम सभी का सुखी जीवन जीने का, सबको सुख में देखने का प्रयास करते थे। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को दीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलयानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्म देश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्निया, फिलीपींस, जापान व कोरिया तक पहुँचे और अपना राजनीतिक व सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया। जब हम लोगों ने उत्खनन किया, मतलब कि खुदाई करी, तब हमें भारत के बारे में बहुत सी चीज़ें उसके एविडेंसेस यानी कि अवशेषों के थ्रू पता चली। तो होता क्या था कि भारत की जो संस्कृति थी वो हमारे पूरे विश्व में थी, क्योंकि जो लोग थे वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से हमारे यहाँ आते थे या हम अलग अपने कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाते थे और वहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में बताते थे और वहाँ के लोगों ने हमारी संस्कृति को अपनाया भी है। प्राचीन भारत में हमारे बंदरगाह एवं नाविक शक्ति अत्यधिक विकसित थी। सिंधु नदी के 6000 वर्ष पूर्व चलने वाले जलयानों का उल्लेख विद्वानों ने किया है। उस टाइम पर हमारा जो वाटर ट्रांसपोर्ट एरिया था वो बहुत ही एक्टिव था। सारा जो हमारा ट्रांसपोर्ट का होता था काम, सब कुछ पानी के थ्रू ही होता था। तो वहाँ उस टाइम के जो बंदरगाह थे वो बहुत ज़्यादा विकसित थे। और इंडस रिवर में जो उस टाइम पर जहाज चलते थे, जलयान चलते थे, उसके बारे में हमें उत्खनन से या अवशेषों से पता चलता है। भारतीय जल व थल दोनों मार्गों से विश्व के विभिन्न देशों में पहुंचे और वहां के निवासियों को अपने धर्म व संस्कृति से परिचित कराया। इन साहसी वीरों ने भारतीय दर्शन विज्ञान, ज्योतिष, स्थापत्य, युद्ध शास्त्र, नीति शास्त्र, संगीत व वैदिक ग्रंथों का विश्व में प्रसार किया। देखिए, हमारे जो भारतीय लोग थे वो अलग अलग देशों में जाते थे, वहाँ पर अपनी संस्कृति का प्रचार करते थे, उनको बताते थे कि हमारी भारतीय संस्कृति किस तरीके की है और लोगों को बहुत पसंद भी आती थी। हमारा जो कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन था उस टाइम पर दूसरे देशों द्वारा बहुत ही तारीफ़ काबिल था, मतलब बहुत पसंद आता था उन लोगों को। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का हमें प्रारंभ से ही विकसित स्वरूप दिखाई देता है। जो हमारी पुरानी जो सभ्यता थी, हमारा जो ट्रेडिशन था, कल्चर था, उसके बारे में ये चीज़ हमें बहुत पहले से पता चलती है क्योंकि बहुत पुराना था ये। सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल है। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वैदिक सभ्यता थी, जो रामायण और महाभारत के समय का जो काल था, मतलब जो टाइम पीरियड था, तो इसको भी हम स्वर्णिम भारत बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पर भी हमारे भारत में बहुत सारी फैसिलिटीज थी, हर एक चीज़ थी हमारे भारत में, तो उसे हम स्वर्णिम काल कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया बोलते हैं। वेदों को विश्व ज्ञान कोश के रूप में जाना जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट सभ्यता है। रामायण और महाभारत के विभिन्न आदर्श एवं नीति ग्रंथों के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। देखिए, हमारी जो सिंधु सरस्वती की जो सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसको मोस्ट सिविलाइज्ड सिविलाइजेशन माना जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लोग अपने घर बनाते थे. यहाँ पर पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाने लगा था घर बनाने के लिए. और ऐसा नहीं कि किसी ने एक जगह बना लिया, किसी ने दूसरी जगह घर बना लिया, सबने एक लाइन से, जैसे आज के टाइम पर, प्रेजेंट के टाइम पर कॉलोनीज बनती हैं, एक लाइन से सारे घर होते हैं, सारे फ्लैट्स जो भी होते हैं, उसी प्रकार वहां पर भी प्रॉपर घर अच्छे से बनाए गए थे, वेंटिलेटेड एक लाइन में, और वहां पर ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था. तो ये बहुत पुराने टाइम की बात है. फिर हमारे जो महाभारत और रामायण का काल था, उसके बारे में जो उसकी मॉरल वैल्यूज थी, वो नीति हमें ग्रंथों के रूप में पता चलती हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं. हमारा महाजनपद काल गणतंत्रात्मक एवं संवैधानिक व्यवस्था का आदर्श रहा है. जो महाजनपद काल था, उसमें डेमोक्रेसी और संविधान की व्यवस्था कैसे की जाती, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें उसमें बताया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन उनके टाइम का जो वो फॉलो करते थे, नॉट आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत बाद में बना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है. इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लौह का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था. जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, इस टाइम पीरियड में बिहार में और उत्तर प्रदेश में लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे लोग. मतलब एक अलग अलग टाइम पीरियड थे ना, जब लोगों ने हर एक चीज को इन्वेंट किया या यूज करने लगे. जैसे कि फायर एक टाइम पीरियड पर हुई, फिर आइस एज आया, स्टोन एज आया, तो उन सब चीजों से ही विकसित होकर लोगों ने इस टाइम पर, उत्तर वैदिक काल के टाइम पर, लोहे का इस्तेमाल करना सीख लिया था. लौह तकनीक ने लोगों की भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई. कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया. जब लोहे का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने लोहा यूज करना शुरू कर दिया, तो उनकी जो सोशल लाइफ थी, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. क्योंकि लोहे का इस्तेमाल वो लोग प्लोइंग के लिए करने लगे, जब खेती किसानी करते थे, लोहे का इस्तेमाल चाकू बनाने के लिए करने लगे, हसिया के लिए करने लगे. तो लोहे का इस्तेमाल जब से हुआ, तब से इन लोगों की लाइफ एकदम ड्रास्टिकली चेंज आए थे इनकी लाइफ में. और फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो प्राचीन जनजाति थी, वो जो विकास हमारा चल रहा था, जो डेवलपमेंट हो रहा था, उसने जो प्राचीन जनजातियां थी उन सभी को जर्जर बना दिया था. मतलब उनको डिस्करेज करा था, क्योंकि जब जैसे जैसे ये धातुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उनके जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स थे उनको खत्म कर दिया जाता था. फिर छोटे छोटे जनपदों की जो जगह है वो महाजनपदों ने ले ली थी. छठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णता अभाव था. संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था. ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे. जब 6th सेंचुरी आई, तो जो हमारा भारत है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बट गया, अलग अलग राज्य में बट गया. और ये जो राज्य में बटे थे, जो राज्य थे, ये उत्तर वैदिक काल के बहुत ही, उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली थे. उससे भी, मतलब बाद का ये बता रहे हैं, उत्तर वैदिक काल के बाद 6th सेंचुरी में जब ये राज्य बने थे. चलिए अब आ जाते हैं हम महाजनपद काल पर, जो कि 600 से 325 ईसा पूर्व. छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई. बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय के अनुसार उसमें 16 महाजनपद विद्यमान थे. देखिए, जब 6th सेंचुरी में अलग अलग राज्य बने, स्वतंत्र राज्य बने, इंडिपेंडेंट, तो उनको क्या नाम दिया गया? उनको नाम दिया गया महाजनपद, जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे. और मेन जो महाजनपद थे बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, वो 16 थे. तो उनके नाम हमें यहाँ पर दिए गए हैं. पहला है महाजनपद काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी. सेकेंड इज कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ. देन अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा. मगध, राजगृह या गिरिव्रज. वज्जी, विदेह और मिथिला. मल्ल, कुशावती, कुशीनारा, फिर चेदी, शक्तिमती, फिर आता है वत्स, कौशाम्बी, फिर आता है कौशल, अयोध्या। बुद्ध काल में दो भाग, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती। तो ये कौशल के भी दो भाग थे, अयोध्या जो थे, तो इसकी भी अलग अलग राजधानी यहाँ पे बताई गई है। देन कम्स पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिचित्र, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य। नेक्स्ट इज मत्स्य, विराटनगर, शूरसेन, मथुरा, अशसक, पोतन या पटेली। देन कम्स अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जयिनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अगला है गांधार, तक्षशिला, एंड द लास्ट वन इज काम्बोज, राजपुर या हाटक। तो ये 16 महाजनपद थे उस टाइम पर, जिनकी अलग अलग ये कैपिटल्स थे। उपर्युक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे, स्वतंत्र और गणतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सार्वधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6 शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुनसुमारगिरी के भाग, अल्लकप के बुली, केसुपुत के कलाम, रामग्राम के कोलिया, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलिविन के मौर्य, वैशाली की लिच्छवी और मिथिला के विधे। तो इनके बारे में बताया गया कि कौन से गणतंत्र थे और कौन से राजतंत्र के थे। चलिए अब हम जानते हैं, अगले पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 2 पर, अंडर द हेडिंग राजस्थान के प्रमुख जनपद। तो ये तो हमने जो उस टाइम के मेन 16 जनपद थे उनके बारे में जाना, अब राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख जनपद थे हम उनके बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, शिवी, अर्जुनयान आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थीं, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। देखिए, जब वैदिक सभ्यता का विकास हो रहा था तो उस टाइम पर राजस्थान में भी जनपद बनने लगे थे। तो जो पंजाब के मेन जो जातियां थी वो आक्रमण के टाइम पर राजस्थान शिफ्ट हो गई, यहाँ पर आ गई, तो वो फिर यहीं पर रहने लग गई थी। उनके बाद से यहाँ पर जनपद का शासन शुरू हो गया। चलिए अब आते हैं, प्रमुख जनपद ये थे, जांगल, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इसका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिचित्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहते हैं। जांगल देश जो माना जाता है, जांगल देश उस टाइम पे बोला जाता था, तो ये अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पर बीकानेर और जोधपुर में, मतलब के आसपास की थी, और ये महाभारत काल में इसे जांगल देश बोला जाता था, और कहीं कहीं पर इसका नाम कुरु जांगला भी था। कुरु जांगला और मौद्रे जांगला, ये अलग अलग नाम मिलते हैं। 3 प्रकार के नाम थे वो, तो उस टाइप के लोगों की जहाँ की लोकेलिटी थी उनने उसका ऐसा नाम रख दिया होगा। फिर ये जनपद की राजधानी उस टाइम पर थी अहिचित्रपुर, जो प्रेजेंट में जिसे हम नागौर बोलते हैं। बीकानेर के राजा इसी जंगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता था। बीकानेर के जो राजा थे वो जांगल देश में होने के कारण, मतलब जांगल देश के स्वामी होने के कारण, वहां के राजा होने के कारण उन्होंने अपना नाम जांगलधर बादशाह रखवाया, तो लोग उन्हें जांगलधर बादशाह कहते थे, और उनका जो राज्य चिन्ह था उसमें भी लिखा रहता था जय जांगलधर बादशाह। तो इससे हमें पता चलता है कि वहां पर क्या बुलाया जाता था उनको। अगला है मत्स्य, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। अभी फिलहाल में जो जयपुर के आसपास का एरिया है उसे उस टाइम पर मत्स्य बोला जाता था। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ये चंबल के पास की जो पहाड़ियां हैं वहां से लेकर सरस्वती नदी तक फैला हुआ था। सरस्वती नदी के जो जंगली क्षेत्र हैं वहां तक फैला हुआ था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बैराट नाम से जाना जाता है, जो उस टाइम के जो अलवर और भरतपुर हैं उसके भी कुछ भाग आता था इसके अंतर्गत। और इसकी जो राजधानी थी, जो कैपिटल था, वो विराटनगर था, जिसे हम प्रेजेंट टाइम में बैराट बोलते हैं। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि शहाज नामक एक राजा ने चेदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और कालांतर में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। ऐसा माना जाता है कि जो शासक बिंदुसार है, वो उन्होंने उनके मतलब उनसे रिलेटेड जानकारी मिलती है हमें ये मत्स्य जनपद के बारे में। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत का जो काल था, उस टाइम पर जो शहाज नामक जो राजा था, उसने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर अपना शासन कर लिया था। फिर बाद में, पहले तो जो चेदी राज्य है वो कालांतर में यह विशाल जो चेदी राज्य उस टाइम पर था, वो फिर बाद में मगध के नाम से जाना जाता था, मगध साम्राज्य का वो एक अंग बन गया था। चलिए अगला है शूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूर से नोई तथा राजधानी को मिथोरो कहते हैं। ये जो पुराना जो क्षेत्र था, ब्रज का क्षेत्र, वहां पर था ये महाजनपद और इसकी राजधानी मथुरा थी। जो यूनानी लेखक हैं, जो प्राचीन, वो इसको कैसे बुलाते हैं, वो इसको बुलाते हैं शूर से नोई, और जो इसकी कैपिटल है मथुरा, उसका नाम इन्होंने रखा है मिथोरा। महाभारत के अनुसार यहाँ यदु यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों में अधिकांश भाग शूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। महाभारत टाइम पर ऐसा बोला जाता था कि यहाँ पर यादव वंश का शासन हुआ करता था, और जो भरतपुर, धौलपुर और करौली जैसे जो जिले हैं, ये इसी शासन के अंतर्गत आते थे, यानी कि शूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी शूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था। अलवर जिले का जो क्षेत्र है वो भी इसी जनपद के अंतर्गत आता है, और वासुदेव जो थे, जिनके पुत्र श्री कृष्ण थे, उनका इसी जनपद से संबंध है, इसी क्षेत्र से संबंध है। चलिए अगला है शिवी। शिवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुसिन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। शिवी जनपद जो था, उसकी राजधानी थी शिवपुर, और जो वहां का राजा था, उसने बाकी जातियों के साथ मिलकर 10 राजाओं को युद्ध में हराया था। उस टाइम पर जो शिवपुर था, वो आज प्रेजेंटली पाकिस्तान में शोरकोट नामक स्थान में है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की यह शिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी थी। अभी हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो शिवी जाति थी और जो भी पंजाबी जातियां थी, वहां पर आक्रमण होने के कारण वो इधर पलायन कर गई थी और इधर आकर रहने लग गई थी। तो जो शिवी जाति थी, वो मेवाड़ में आकर निवास करने लगी थी। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों में शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के पास जो शहर है, वो इस जनपद की राजधानी थी। शहर का नाम नहीं बताया गया इधर। और मेवाड़ के जो अलग अलग स्थान थे, वहां पर शिवियों के सिक्के मिले थे। जब उत्खनन हुआ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर खोदा गया, बरी किया गया, तो वहां पर पता चला कि ये इनके सिक्के मिले थे, तो उनके होने का प्रमाण मिला हमें वहां पर। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। जो मंदसौर के पास जो 5 मुखा गुहालेख प्राप्त हुआ है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनका जो पूरा एरिया था, जहाँ पे ये लोग फैले हुए थे, तो ये पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक थे। यहाँ तक हम जान सकते कि ये यहाँ तक रहते थे। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संथागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। गणतंत्र डेमोक्रेटिक शासन था, लेकिन उसके बाद भी ये जो जनपदों की बागडोर थी, ये वहाँ के जो जनपद था, वहाँ के परिवारों के बीच में ही थी, और जो मेन डिसीजंस हुआ करते थे, वो ही परिवार के सदस्य लिया करते थे। संथागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनुविरोध कहा जाता है। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी शालिकाएं काम में ली जाती थी। होता क्या था कि जो ये परिवार के सदस्य थे ये हर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अपना एक रिव्यू देते थे, एक व्यू अप पॉइंट अपना रखते थे, और अगर कोई और इनका कोई विरोध नहीं कर सकता था। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते थे, एक वोट सिस्टम कर देते, वोटिंग सिस्टम कर देते थे कि आप वोट करो, उससे हम रिजल्ट पता कर लेंगे कि ये बात किस तरफ जाएगी। संथागार जनपदों की सबसे बड़ी संख्या थी। राज्य के नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों के केंद्रीय संथागार के अलावा प्रांतीय संथागार भी होते थे। संथागार जनपदों की संख्या बहुत बड़ी होती थी और राज्य के जो प्रॉपर डिसीजंस हुआ करते थे वो यहीं लिए जाते थे, इसी सभा में लिए जाते थे। विशाल गणराज्य के केंद्रीय संथागार अलग होते थे और दूसरे छोटे वाले अलग हुआ करते थे। प्रांतीय मतलब संथागार अलग होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इसके पतन के लिए उत्तरदायी थी। उस टाइम पर क्या हुआ था कि गुटबाजी कर ली लोगों ने, ग्रुपिज्म कर लिया और एक दूसरे के खिलाफ चले गए। तो इन सब चीजों के चक्कर में जो इनका जो जनपद था वो पतन हो गया, मतलब नष्ट हो गया, खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। अब आ जाते हैं हम सेकेंड जो है हमारा मौर्य, शुंग, सातवाहन, गुप्त, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, पल्लव एवं चालुक्य साम्राज्य। ये हमारे जो अलग अलग साम्राज्य थे, पहले तो हमारे आए जनपद, अब जनपद के बाद कौन आया, हमारे अलग अलग साम्राज्य आए, जिसमें पहला है मौर्य वंश। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में अभिभार्व हर्यक वंश के समय हुआ है। और कालांतर में मगध ने प्रायः समस्त उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। 16 महाजनपद जो थे उसमें से एक था मगध। उसके साम्राज्य के रूप में हर्यक वंश सामने आया। हर्यक वंश का जो वो शासन है वो शुरू हुआ। और बाद में मगध के बाद मगध ने क्या किया, ज्यादातर जो राज्य थे उनको अपने अंडर में ले लिया था। मौर्य वंश की स्थापना। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घननंद सिंहासनारूढ़ था। इस समय पश्चिमोत्तर भारत सिकंदर से आक्रांत था। तो हमें टाइम पीरियड बताया गया है कि ईसा पूर्व 326 ईस्वी में मगध पर कौन सा राजा बैठा था, घननंद सिंहासनारूढ़। और इस टाइम पर पूरा पश्चिम भारत सिकंदर के आक्रमणों से ग्रस्त था। प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से भी पीड़ित थी। अहस्य कर भार के कारण राज्य के लोग उससे असंतुष्ट थे। इस परिस्थिति में मगध को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से उत्पन्न संकट को दूर करे और उसे एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को चरितार्थ करे। अब जो प्रजा थी वहां की, वो अपने इस राजा से बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उन्होंने जो कर है यानी कि टैक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा के रखा हुआ था। और उससे जो वहाँ की जनता थी वो संतुष्ट नहीं थी क्योंकि उनको इतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, उनके पास पैसा ही नहीं बचता था। तो बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ की जनता को अपने राजा से। तो इस टाइम पर उनको कोई ऐसा चाहिए था, ऐसा राजा चाहिए था कि जो इनको फॉरेन अटैकर्स से भी बचाए और इन सबको एक सूत्र में बांध कर रखे, मतलब एकजुट बना के रखे, टैक्स वगैरह सब कम कर दे और इनके लिए अच्छी चीजें करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नभमंडल पर कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त प्रकट हुआ तथा एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना करी। और इसी टाइम पर कौटिल्य का जो शिष्य था चंद्रगुप्त वो प्रकट हुआ और इसने कौन से वंश की यहाँ पर स्थापना करी, इसने करी मौर्य वंश की स्थापना। तो ये सब चीजें हुई, उसके बाद आखिरी में मौर्य वंश की स्थापना हुई। अब आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 322 से लेके 298 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धननंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। तो इनके जो गुरु थे चाणक्य, उनकी हेल्प से जो अंतिम नंद शासक था घननंद को, उसको पराजित किया इनने। और 25 ईयर्स ऑफ एज के टाइम पर ये मौर्य मगध के शासक बन गए, राज सिंहासन पर बैठे। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। 305 ईसा पूर्व में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सिल्यूकोस निकेटर को पराजित किया। उन्होंने एक अभियान चलाया, सिपाही अभियान चलाया, इसका मतलब था कि उन्होंने सारे राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहा, अपने राज्य से मिलाना चाहा उनको जीत कर। तो 305 में उसने यूनानी जो शासक था सिल्यूकोस निकेटर उसको हराया था। संधि हो जाने के बाद सिल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। तो जब इन लोगों के बीच में समझौता हो गया था दोनों के बीच में, तो जो सिल्यूकस था उसने चंद्रगुप्त से 500 हाथी ले लिए और जो पूर्वी अफगानिस्तान का जो एरिया है, बलूचिस्तान और सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है, वो इन्होंने चंद्रगुप्त को दे दिया था। सिल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया था और मेगस्थनीस के को अपने राजदूत के रूप में उसके दरबार में भेजा। सिल्यूकस ने अपनी जो बेटी था उसका शादी चंद्रगुप्त से कर दी थी और मेगस्थनीस को यहाँ पर अपना राजदूत बना के भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तमिल ग्रंथ अहनानुरु और मुरनानुरु से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने बद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। अब देखिए, शादी तो करवा दी थी इनने, मेगस्थनीस को भी अपना राजदूत बना के भेज दिया था सिल्यूकस ने। उसके बाद जो इनका विशाल साम्राज्य था उसमें बहुत सारी जगह आती थी, मतलब काफी सारा इन लोगों ने कॉन्कर करके रखा हुआ था चंद्रगुप्त जी ने। फिर उन्होंने एक ग्रंथ के थ्रू पता चलता है, जो ग्रंथ का नाम है तमिल ग्रंथ है वो, उसका नाम है अहनानुरु और मुरनानुरु। इससे पता चलता है कि उन्होंने साउथ इंडिया के रीजन में भी अटैक किया था, इस ग्रंथ से हमें पता चलता है। फिर उन्होंने जब अपने बुढ़ापे पे जैन धर्म से दीक्षा ले ली थी, उसने 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने उपवास किया 298 ईसा पूर्व में मैसूर में, वहां पर रहने लग गए और मतलब उपवास उन्होंने रखा। क्यों रखा उपवास? क्योंकि मतलब उसके बाद वो मोह माया से मुक्त हो चुके थे, सब कुछ जैन धर्म की उन्होंने दीक्षा ले ली थी, तो उपवास करने की वजह से उन्होंने अपना जो शरीर है वो त्याग दिया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स कहते थे। बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त का बेटा था और उसका उत्तराधिकारी भी था उसके राज्य का। जो यूनानी लेखक हैं वो इसको अमित्रोचेट्स कहते हैं। वायु पुराण में इसे भद्रसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। अब हर अलग अलग जो ग्रंथ हैं जो उस टाइम के, उसमें इनके अलग अलग नाम हैं। वायु पुराण में इनको भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में इनको सिंहसेन कहा गया है। उसने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उन्होंने साउथ इंडिया साइड के भी कुछ क्षेत्रों को जीता और उनको अपने राज्य में, अपने साम्राज्य में मिला लिया। दिव्या वदान के अनुसार इसके शासनकाल में तक्षशिला में दो विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहले अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया। ऐसा बताया जाता है कि इनके शासनकाल में तक्षशिला के टाइम, मतलब तक्षशिला जो क्षेत्र है वहां पर दो अटैक्स हुए, दो विद्रोह हुए, जिसको दमन मतलब खत्म करने के लिए वहां पर अशोक और बाद में सुसीम को भेजा गया था, इनके बेटे थे वो। बिंदुसार को के राजदरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। इनके जो यूनानी शासक थे उनने राजदरबार में, बिंदुसार के राजदरबार में एक डायमेकस नामक व्यक्ति को अपने राजदूत के तौर पर नियुक्त किया था। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलोडल्फस मेली द्वितीय ने डाइनीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो अब ये दूसरे शासक है जिन्होंने अपने एक राजदूत को यहाँ पर भेजा था। चलिए तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम अशोक से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग।